بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں الیکشن کا موسم اور سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم کے تعلق سے گہما گہمی۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کا بگل بج چکا ہے اور تمام سیاسی جماعتیں مکمل طور پر اس اکھاڑے میں اترنے کے لیے تیار ہو چکی ہیں۔ ہر کوئی اپنا نعرہ اور اپنا انتخابی منشور عوام کو یا تو دے رہی ہے یا دیا چاہتی ہے۔ اس دوران الیکشن کمیشن میں سب سے زیادہ گہما گہمی نظر آ رہی ہے، جہاں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ کسی سے سوال جواب ہو رہا ہے تو کسی کو سوال جواب کے لیے طلب کیا جا رہا ہے، کسی کے کاغذات نامزدگی منظور رہ رہے ہیں تو کسی کے مسترد، اور کسی کو مسترد کیے جانے کے بعد دوبارہ وضاحت کے لیے طلب کیے جانے کا سلسلہ پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ اور 11 مئی کو پاکستان میں عام انتخابات کے لیے اسٹیج بالکل تیار نظر آ رہا ہے، لیکن بعض سیاسی جماعتوں کی طرف سے الیکشن کمیشن کے بعض اقدامات پر شکوک و شبہات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس دوران نگراں وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس کل نگراں وزیر اعظم میر ہزار خان کھوسو کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں اس بات کے عزم کا اظہار کیا گیا کہ انتخابات شفاف ہوں گے، آزادانہ ہوں گے، منصفانہ ہوں گے اور ساتھ ہی بر وقت ہوں گے۔ جی ہاں، انتخابی عمل کا سلسلہ تو 11 مئی تک اور اس کے 2-1 دن بعد تک جاری رہے گا، جب تک باقاعدہ نتائج کا اعلان نہیں ہو جاتا۔ لیکن یہاں پر ہمارے ساتھی نے ایک رپورٹ تیار کی، اسے دیکھتے ہیں، پھر اپنے معزز مہمانوں سے اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔
پاکستان میں انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ اس کو 13,048 کاغذات نامزدگی موصول ہوئے، جن کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ کا کام 7 اپریل تک جاری رہے گا۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے عمل میں الیکشن کمیشن نے ایف بی آر، نادرا اور اسٹیٹ بینک کا تعاون حاصل کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسی کے ساتھ نگراں حکومتوں کے نام جاری کردہ سرکولر میں حکم دیا ہے کہ جن افسروں کو باقی رکھنا ضروری ہو ان کو چھوڑ کے تمام وفاقی اور صوبائی سیکرٹریوں کا تبادلہ کر دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے اسی طرح تمام خود مختار اور نیم خود مختار اداروں کے جانبدار سربراہوں کے تبادلے کی بھی ہدایت دی ہے۔ دوسری جانب جعلی ڈگریوں کے معاملات میں ایک سابق وفاقی وزیر اور ایک سابق رکن صوبائی اسمبلی کو منگل کے روز قید اور جرمانے کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ کوئٹہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق عدالت نے سابق وفاقی وزیر ہمایوں کرد کو ڈگری جعلی ثابت ہونے پر 1 سال قید اور 5,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک عدالت نے سابق رکن صوبائی اسمبلی خلیفہ عبدالقیوم کو ڈگری جعلی ثابت ہونے پر 3 سال قید اور 5,000 روپے کے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ ادھر پاکستان کے الیکشن کمیشن نے جعلی ڈگری کے معاملے میں 24 سابق ارکان اسمبلی کو 5 اپریل کو طلب کر لیا ہے۔ ان ارکان کو سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں طلب کیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جن سابق ارکان اسمبلی کو طلبی کے نوٹس جاری کیے ہیں، ان میں سابق وفاقی وزیر بھی شامل ہیں۔ آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی اہلیت کے تعلق سے جو اقدامات کیے ہیں، اس کی زد میں بہت سے امیدوار آئے ہیں۔ البتہ پاکستان کے اندر کچھ تجزیہ نگاروں نے آرٹیکل 62 اور 63 پر اعتراضات بھی کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت کی اب تک کی کارکردگی اس انداز کی رہی ہے کہ اس کے بارے میں کسی نے عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا ہے، اور قوی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ملک میں انتخابات آزادانہ اور شفاف ہوں گے۔ یورپی یونین کے وفد نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ انتخابات کی نگرانی کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ اس دفعہ الیکشن کمیشن کے سلسلے میں بھی یہ تاثر عام ہے کہ پارلیمنٹ نے اسے کافی اختیارات دیے ہیں، اور اس کا کریڈٹ یقینی طور پر زرداری حکومت کو جائے گا، جو 5 سال اقتدار مکمل کرنے کے بعد اس وقت شدید تنقیدوں کی زد پر ہے۔ زرداری کے دور اقتدار میں پاکستان کی جمہوری حکومت نے پہلی دفعہ اپنی 5 سالہ مدت پوری کی ہے، جسے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ویسے ملک کو اس 5 سالہ دور میں گوناگون مشکلات کا سامنا بھی رہا، اور کئی دفعہ حکومت کا وجود بھی خطرے میں پڑا۔ تاہم پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنی مدت پوری کی. البتہ صدر آصف علی زرداری نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ حکومت کی کارکردگی میں کچھ کمزوریاں رہیں, تاہم انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہم نے ملک کی سمت درست کر دی. جمہوریت کی مکمل حمایت کے ساتھ ساتھ پاکستانی تجزیہ نگاروں کا بڑا طبقہ زرداری حکومت پر تنقیدیں بھی کر رہا ہے اور بڑے پیمانے پر بدعنوانی کے الزامات عائد ہیں. البتہ میڈیا میں حکومت پر اس وسیع پیمانے پر آزادانہ تنقیدوں سے میڈیا کی آزادی کے خیال کو بھی تقویت پہنچتی ہے. کچھ تجزیوں میں جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں ان کے مطابق تو 5 سالہ دور میں 18 خرب روپے کی بدعنوانیاں ہوئی ہیں. تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری اس دفعہ کے انتخابات میں اپنی پارٹی کی کامیابی کی طرف سے مایوس ہیں اور مسلم لیگ نون کی کامیابی کے امکانات روشن ہیں, جبکہ عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف بہت اہم پوزیشن میں پہنچ گئی ہے. انتخابات کے نتائج کیا ہوں گے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. فی الحال تو یہی چیز کافی امید افزا ہے کہ ملک میں معینہ وقت پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور سب کو امید ہے کہ انتخابات آزادانہ اور شفاف ہوں گے.
جی ہاں, سب کو امید ہے کہ انتخابات آزادانہ, منصفانہ اور شفاف ہوں گے انشاءاللہ. چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر اور سرکردہ تجزیہ نگار جناب پروفیسر نذیر حسین صاحب. السلام علیکم جناب.
السلام علیکم مہدی صاحب.
جی پروفیسر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب جب کہ 5 سال حکومت پوری کر لی پیپلز پارٹی نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں یا جب سے پاکستان مرض وجود میں آیا اس کی تاریخ میں یہ پہلی ایسی حکومت تھی جمہوری جس نے اپنے 5 سال پورے کیے ہیں, تو اب اس کے بعد جب انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو عوام کا حوصلہ, ان کا جوش اور ولولہ کیسا ہے؟
یہ سب دو تین باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی فرمایا ہے کہ پاکستان میں جمہوری دور میں یہ سب سے پہلی حکومت ہے جس نے اپنے 5 سال اپنے جمہوری دور میں پورے کیے ہیں. اس میں کسی ایک سیاسی جماعت کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے, تمام سیاسی جماعتوں نے اس جمہوری عمل کو ڈی ریل ہونے سے بچایا ہے. اور دوسرا سب سے بڑا اس میں فیکٹر جو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی کوئی ریئل ٹائم ہمیں اپوزیشن کہیں بھی نظر نہیں آئی. اگر آپ دیکھیں تو سینٹر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم بھی تھی, کچھ عرصہ مسلم لیگ نون بھی رہی, اس کے بعد جے یو آئی ایف بھی رہی, پی ایم ایل کیو بھی رہی. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی اپوزیشن, جیسے میں نے عرض کیا پی ایم ایل این جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ لاہور میں یا پنجاب میں حکومت کر رہی ہے, ایم کیو ایم جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں حکومت کر رہی ہے, جے یو آئی ایف اور ایم اور پی ایم ایل کیو جو ہے وہ بلوچستان میں حکومت کر رہی ہے, اے این پی پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو لہذا کوئی ریئل ٹائم ہمیں کوئی اپوزیشن نظر نہیں آئی, اور اسی لیے جمہوریت کا جو یہ سفر ہے وہ آگے بڑھتا رہا, چونکہ تمام سٹیک ہولڈرز نے یہ تہیہ اور عہد کر لیا تھا کہ ہم اس جمہوری عمل کو کسی طرح سے ڈی ریل ہونے نہیں دیں گے. لیکن دوسری طرف جو آپ کا دوسرا سوال کا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ عوام کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے. انفارچونیٹلی دیکھیں جی, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہیں, اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچتی. ہم اس کو اکنامک ٹرمینالوجی میں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کہتے ہیں. انفارچونیٹلی اس دور حکومت میں غربت میں اضافہ ہوا ہے, مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بڑی حد تک خراب رہی اور ہوئی بھی, اور ابھی بھی الیکشن جو ہیں وہ ایک سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہوگی. لہذا اگر کچھ طرف ہمیں اچھائیاں اور اچھے کام نظر آ رہے ہیں تو کچھ طرف ہمیں برائیاں اور برے کام نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا ایک انوکھا الیکشن ہے جس میں فرسٹ ٹائم جو ہے وہ آرٹیکل 62 اور 63 استعمال کیا. آل تو یہ ایکس ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کی پیداوار تھی اور اس کے دور میں اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا, لیکن اس حالات میں ابھی میڈیا اتنا آزاد ہے کہ لمحہ بلمحہ کی خبریں جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں, کسی کو کلمہ نہیں آ رہا اور کسی کو وضو نہیں آ رہا اور کسی کو غسل نہیں آ رہا. تو خیر یہ بڑی عجیب و غریب سی باتیں ہیں, لیکن عوام کو کیا ملا اور عوام کیا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا ایک سوال ہے. انفارچونیٹلی ہم کسی بھی حکومت کو مرز الزام نہیں ٹھہرا سکتے, چاہے وہ پنجاب کی گورنمنٹ ہو, سندھ کی ہو, این ڈبلیو ایف کے پی کے کی ہو, بلوچستان کی ہو یا سینٹر کی ہو. ہر جگہ جو ہے عوام جو ہے حکومتوں سے تنگ ہیں, مہنگائی کی وجہ سے, لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے, سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے. अब कुछ नए फैक्टर आ गए हैं। वो फैक्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो इमरान खान का फैक्टर है, क्योंकि लोग ये कहते हैं, तजिया निगार ये कहते हैं कि इमरान खान जो हैं वो पहले से आजमाए हुए नहीं हैं, बाकी तमाम जो हैं सियासी लीडरान वो आजमाए हुए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान के साथ एक नई सियासी ताकत है जिसको हम यूथ फैक्टर कहते हैं। बहुत से नौजवान जो हैं वो इमरान खान के साथ इस वक्त सर बसर चल रहे हैं। और मैं आपको यहाँ आदाद शुमार बता दूं कि पाकिस्तान की आबादी में से जो 18 करोड़ में से 8 करोड़ वोटर हैं, उसमें से 4 करोड़ वोटर जो हैं वो पंजाब में बसते हैं, और इसमें से 35% वोटर्स जो हैं वो सारे के सारे यूथ पे बेस करते हैं। लिहाजा एक तो यह है कि यूथ फैक्टर आइंदा आने वाले इंतखाबात में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इख्तियार करेगा, और दूसरी बात यह है कि 4 करोड़ वोटर जो पंजाब में हैं उसमें से 2 से 2.5 करोड़ वोटर जो हैं वो यूथ है सारे का सारा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और फिर मैं आपको ये बता दूं कि फ्यूचर का बैटल ग्राउंड जो है वो है ही पंजाब, क्योंकि आप देखें पीएमएलएन लड़ रही है, पीएमएलक्यू लड़ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना वोट बैंक है, इसके अलावा एमक्यूएम भी आ गई है और पीटीआई भी आ गई है। लिहाजा ये बहुत एक अहम पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान की आइंदा जो सियासी क़यादत है उसका फैसला होगा, बल्कि एक जो लोग कह रहे हैं एक नया पाकिस्तान जो है वो मार्ज वजूद में आने वाला है, और इसीलिए आवाम जो हैं वो एक नई क़यादत की तरफ देख रहे हैं कि शायद इमरान खान जो है वो उनकी नई क़यादत प्रोवाइड करे और पाकिस्तान को एक बेहतर सूरत हाल की तरफ लेके चला जाए।
और शुक्रिया, चलते हैं इस वक्त लंदन स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं सीनियर और सरकर्दा तजिया निगार जनाब मंजूर रिजवी साहब। मुमताज दानिशवर, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
मंजूर साहब, आपने अभी हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो के मेहमान की गुफ्तगू सुनी, क्या इस बार इक्तदार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से हटकर किसी तीसरी कुव्वत के पास जा सकता है जिसका नाम इमरान खान है या तहरीक इंसाफ पाकिस्तान है?
हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यकीनन ऐसा ही होगा। मेरा ख्याल है ये जो रिवायती जमातें हैं जिनमें सरे फहरस्त जो हैं वो जमातें नवाज शरीफ साहब हैं और आसिफ जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी है, क्योंकि ये भुट्टो की पीपल्स पार्टी तो है नहीं, तो ये जमातें यकीनन वो इतनी सीटें हासिल नहीं कर पाएंगी जैसे कि इनका पहले तसल्लुत रहा है। उसकी वजह सिर्फ मैं तीन चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये कहना कि ये पहली मरतबा हो रहा है कि ये साफ और इलेक्शन हो रहे हैं या आवाम की इसमें दिलचस्पी है, उसकी वजह से भी यह है कि ऐसे इलेक्शन 70 में भी पहले हो चुके हैं जिसमें भुट्टो की पार्टी ने, जो उस वक्त वो भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी, उसने बड़े बड़े बुत गिरा दिए थे। लेकिन उस वक्त फ़र्क ये था उन दिनों में, रवाद के दिनों में लोगों को जज्बा उस वक्त पर यही था, वो भी एक रद्द अमल था जाबरीत और आमरीत के खिलाफ, वो भी एक रद्द अमल था, लोगों की महकूमी का इजहार था। लेकिन फ़र्क यह है आज के ज़माने, आज के इंतखाबात में और उस ज़माने के इंतखाबात में, कि उस वक्त मीडिया इतना फ़ाल नहीं था, सिर्फ प्रिंट मीडिया था, और प्रिंट मीडिया पर भी इतनी कदगने थी, इतनी पाबंदियाँ थी कि ज़मीर कुरैशी को और दूसरे कई सहाफ़ियों को मरवाया गया, हसन नासिर का वाक़ हुआ और बहुत सारे ऐसे वाक़ात थे कि प्रेस इतना आज़ाद नहीं था। अब तो मीडिया की ये आलम है कि छोटी सी बात भी हो तो लोगों के सामने उछाल कर रख देता है, तो लोगों को इससे तकवीत मिली है कि लोग ये समझते हैं कि हमारी बात ऊपर के ऐवानों तक जा रही है, या एक गली से निकल कर दूसरी गली में, शहर से निकल कर दूसरे शहर में, बस्ती से निकलकर दूसरी बस्ती में जा रही है, इसलिए इसके अंदर यह गहमा गहमी पैदा हुई है। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर यह हुआ है कि जैसे कहा जाता है कि ये 5 साल की हुकूमत रही है, जमहूरियत रही है, अभी अगर जमहूरियत नाम है किसी एक पार्टी के तसल्लुत का वो तो यकीनन हुआ है, लेकिन इसी 5 साल के अंदर महंगाई और बदअमनी और लूट और खसूट और करप्शन और बेईमानी बददियानती के जो रिकॉर्ड कायम हुए हैं वो भी इस 5 साल के अंदर, कभी पाकिस्तान के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जितना कोई बहुत बड़ा जुर्म होता है उसका रद्द अमल भी वैसा होता है, जुर्म जितना संगीन होगा उसके रद्द अमल भी वैसे ही संगीन होगा। तो ये 5 साल के अंदर जिस तरह लोगों को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया गया है, हत्ता कि उनका आखिरी रमक हयात भी जो उनके अंदर जिस्म के अंदर तवाना नातवान जिसम के अंदर रह गई थी वो भी निचोड़ लिए गई है, तो उसका नतीजा ये निकला है कि लोग भी बहुत ज़्यादा अब जो हैं वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, तो इस वजह से इस इंतखाबात की गहमा गहमी जो है वो पहले से ज़्यादा उरूज पर आ रही है। और तीसरी बात मैं ये सिर्फ अर्ज करता चला जाऊँ कि आवाम की तवक्कात बहुत ज़्यादा है इस इलेक्शन से, आवाम ये समझते हैं कि उनको पहली मरतबे ये मौका मिल रहा है کہ وہ بلا کسی خوف و خطر اپنی رائے کا اظہار کر سکیں گے اور حکمرانوں کو بدل دیں گے. عوام کی توقعات بہت زیادہ ہیں لیکن جو اسٹیبلشمنٹ اور حکمران طبقہ ہے وہ اتنی آسانی سے اپنے ہاتھ سے اختیار اور اقتدار کی رسیوں کو اس طرح وہ لوگوں کو اختیارات کو وہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوگا. تو اس لیے میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ آزادانہ امیدوار جو ہیں جو ان پارٹیوں سے الگ ہیں
جی.
جتنے بھی مشترکہ پارٹی اے این پی ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, ایم کیو ایم ہے, پیپلز پارٹی ہے اور نون پارٹی ہے یا قاف لیگ ہے. قاف لیگ تو خیر برائے نام رہ گئی اب. تو ان سب میں وہ بات نہیں ہوگی, یہ اتنی سیٹیں نہیں لے پائیں گے. آزاد امیدوار زیادہ آئیں گے اور اس کے بعد منڈیوں میں بھاؤتاؤ کا ایک نیا مارکیٹ شروع ہو جائے گی, ایک نیا بازار گرم ہوگا.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا منظور صاحب کی خدمت میں.
بیزار ہو چکے
جی, بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. چلتے ہیں اس وقت کراچی جہاں پر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر اور سرکردہ تجزیہ نگار اور صحافی جناب آغا مسعود حسین صاحب. السلام علیکم جناب.
السلام علیکم
آغا صاحب. بات یہ ہو رہی ہے, ظاہر ہے کہ الیکشن سے پہلے جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ کون آئے گا, کس کی سیٹیں زیادہ ہوں گی وغیرہ وغیرہ, تو ابھی ہمارے جو دو مہمان لندن اور اسلام آباد میں تھے ان کا کہنا تھا کہ عوام چاہتے ہیں کہ اس بار کوئی تیسرا متبادل ہو, کوئی تیسرا آپشن ہو. ظاہر ہے کہ ماضی میں دو ہی جماعتیں حکومت کرتی رہی ہیں, تو اب وہ ایک چینج چاہتے ہیں, ایک تبدیلی چاہتے ہیں, تو کیا ایسا کچھ ہے پاکستان؟
دیکھیے میرا خیال ہے کہ لوگوں کی خواہشیں تو یہی ہیں کہ مطلب ان لوگوں کو لایا جائے کہ جو پہلے اقتدار میں نہیں آئے تھے اور آزمائے ہوئے نہیں تھے. خواہش تو ہو سکتی ہے, اگر اگر فقیر جو ہے وہ خواب جیسے گھوڑوں میں بیٹھنے کے, تو یہ تو میرا خیال ہے ناممکن ہے, کیونکہ پاکستان کا سماج جو ہے وہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں سے ایک لپٹا ہوا سماج ہے جہاں بدعنوانیاں بڑی عام ہیں. اور اس کے لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 5 سال میں جو جمہوریت تھی اس نے تو پاکستان میں عوام کا جینا دوبھر کر دیا. جو بھی کپڑے ان کے پاس تھے وہ کپڑے بھی ان سے اتر گئے. بے روزگاری اتنی عام ہے پاکستان میں, اور یہی وجہ ہے کہ ہر گلی گلی کوچے میں جو ہے لاقانونیت جو ہے وہ روج پر ہے. تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان انتخابات میں کوئی واضح تبدیلی ہوگی, لیکن عوام کی جو خواہش ہے میں نے جو محسوس کی ہے پشاور سے لے کے کراچی تک کہ وہ تبدیلی چاہتی ہے. لیکن تبدیلی کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے, کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور دیگر مطلب یہ جو نگراں حکومت ہے مل کے ایسے لوگوں کو موقع دیں گی کہ جو واقعی کام کرنا چاہتے ہیں عوام, اگر وہ اقتدار میں آ گئے تو کچھ تھوڑی بہت تبدیلی آ سکتی ہے, ورنہ یہ ایک ایسا کرپٹ معاشرہ ہے کہ جس میں تبدیلی کی امید تو رکھنا میرا خیال ہے کہ محال ہے. تاہم 62-63 کا جو آئین کا جو شق ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, اور لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے ماضی میں جمہوریت کے نام پہ یا کسی اور نام سے پاکستان کو لوٹا ہے, پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, ان کو نہیں آنا چاہیے. تو یہ کوششیں تو ہو رہی ہیں, کیونکہ عوام تنگ آ گئے, تنگ آمد پر جنگ آمد, کیونکہ جو ان کا استحصال ہوا ہے جس طریقے سے غریبوں کا, مسکینوں کا, کچلے ہوئے لوگوں کا, تو وہ تو بالکل تبدیلی کی خواہش رکھتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ اور دیگر جو ادارے ہیں پاکستان میں جاگیرداروں کے جو تبسط سے چلتے ہیں وہ بہت مضبوط ہیں, اور ان میں کوئی ڈینٹ ڈالنا یا کسی قسم کی کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کرنا وہ جوئے شیر کے لانے کے مترادف ہے. لیکن پھر بھی مطلب یہ الیکشن ہوں گے, ایک ووٹ کا بڑا بڑی اہمیت ہے, لوگ ووٹ دیں گے اور ووٹ دینے کے بعد جو تبدیلی آئے گی اس کو بھی ہم دیکھیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہیں جو جن کو کبھی موقع نہیں ملا, گزشتہ 17 سال سے وہ کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی قیادت کے سلسلے میں, نوجوانوں کا جو ہے رجحان ان کی طرف ہے, پاکستان کے نوجوانوں کا رجحان ان کی طرف ہے. نادرا نے جو ڈیٹا بیس شائع کیا ہے اس کے تحت 46% لوگ پاکستان میں نوجوان ہیں 18 سے لے کے 35 سال کی عمر, تو یہ لوگ جو ہے عمران خان کی طرف مائل ہیں. اور اگر یہ نوجوان نکل آئے وہ دینے کے لیے, تو میں بہت امید ہوں کہ تبدیلی آ سکتی ہے. عمران خان تمام تر اپنی کوتاہیوں کے باوجود بھی, اپنی ذاتی خامیوں کے باوجود بھی ایک اچھے انسان ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے, کرپشن ختم ہو اور عوام کو ان کو چھنا ہوا حق ملے. تو یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے. نواز شریف بھی میرا خیال ہے ریس میں ہے, اور میڈیا کیونکہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہے اور لفافہ کلچر چلتا ہے ان کی طرف سے, تو میڈیا جو ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ نواز شریف کو زیادہ ووٹ ملیں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر نواز شریف کے سلسلے میں کوئی بڑی واضح تبدیلی آئے گی. جنگ جو ہوگا پانی پت کی جنگ جو ہے پنجاب میں لڑی جائے گی. پنجاب میں नवाज शरीफ का थोड़ा बहुत असर जरूर है सेंट्रल पंजाब में, लेकिन अब इमरान खान की जो कुव्वत है उसकी वजह से तब्दीली बिल्कुल आ सकती है। पीपुल्स पार्टी का कोई वजूद नहीं है पंजाब में, यहाँ तक कि वहाँ के जो मरकजी रहनुमा है उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी नहीं दाखिल कराए। तो ये सूरत हाल जो है सब पाकिस्तान में मौजूद है। आवाम की ख्वाहिश तो तब्दीली की है, वो चाहते हैं तब्दीली आए, गरीब लोगों का उनका हक मिले।
आगा साहब, और आगा साहब, अभी आपने कहा कि आगा साहब, अभी आपने फरमाया कि पीपुल्स पार्टी का कोई वजूद पंजाब में नहीं है। अभी जो पार्लियामेंट जो जिसने अपना टर्म मुकम्मल किया है उसकी अगर फहरिस्त देखी जाए तो बड़ी तादाद में अरकान कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी के पंजाब से मुंतखब हुए हैं। तो
देखिए अब हाँ, तो वो देखिए वो हमदर्दी के वोट थे। 2007 में बेनजीर को शहीद किया गया, उनको मारा गया, तो हमदर्दी के वोट तो मिले। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 3 करोड़ वोट थे, और इस वक्त भी मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन ने 70 करोड़ जाली वोटों को जो है मनसूख किया है, वो पीपुल्स पार्टी के वोट थे और कोस्टल एरिया के थे और कच्ची आबादियों के वोट थे। तो अब ये यानी लड़ा बंदा में पीपुल्स पार्टी वाले, और उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि 5 साल तक जमहूरियत के नाम पर लोगों को धोखा देते रहे, उनको लूटमार करते रहे, पाकिस्तान का खजाना खाली हो गया। यहाँ तक कि अगर आइंदा आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट स्टेट कहलाएगी।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा आपकी खिदमत में। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नजीर साहब, आपने आगा साहब की गुफ्तगु मुलाहजा फरमाई। इससे पहले अभी नोएडा में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर आवाम से खिताब करते हुए पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमने पाकिस्तान या मुल्क की सिमत दुरुस्त कर दी है, पाकिस्तान की जो गुज़िश्ता हुकूमत रही उसकी कारकर्दगियों से अलग हटकर जो भी कहा जाए, लेकिन एक बात हकीकत है उनके अपने लफ्ज़ों में कि हमने मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम बनाया है, मुल्क की सिमत दुरुस्त कर दी और जमहूरियत को मुस्तहकम बनाया। उनके इस दावे या उनकी इस बात में कितना वजन आप देखते हैं?
जी डेफिनेटली मेहरी साहब, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और जरदारी की हुकूमत ने जो है वो एक तो पॉलिटिकल कल्चर को फ़रोग दिया है, उन्होंने जो अपनी पॉलिसी ऑफ रिकनसलिएशन है उसके तहत कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं रखा, विच हंटिंग नहीं हुई, जो एक खासा रहा है पाकिस्तान की सियासत का। तो लिहाजा अगर ये कहा जाए जो आपने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। देखें, अच्छे पहलू भी होते हैं, बुरे पहलू भी होते हैं, लेकिन जो क्रेडिट है जरदारी हुकूमत का वो क्रेडिट देना चाहिए, चाहे आप जरदारी साहब की किसको रिकनसिलेशन पॉलिसी कहें, चाहे मीडिया के डायनेमिक्स कहें या दूसरी कुवतों की आमद कहें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कितना स्ट्रांग है ये भी कहें, लेकिन एक क्रेडिट जो है वो उनको देना चाहिए। लेकिन मैं दो बातें कहने की इजाज़त चाहूँगा, बल्कि तीन। एक तो बात यह है कि आगा मसूद साहब बहुत सीनियर तजिया निगार हैं, मैं उनकी राय से इख्तलाफ करने की इजाज़त चाहता हूँ। वो ये कि वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का बिल्कुल वजूद नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सदरन पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है बड़ा टफ टाइम देगी, और अभी सिचुएशन भी चेंज हो चुकी है, पीएमएलक्यू और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में इतिहादी हैं और कुछ जगहों पर वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कहें कि यूथ फैक्टर जो है इमरान खान के पास है, तो यूथ फैक्टर पीएमएलएन ने भी यूज़ किया है और यूथ फैक्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी यूज़ किया है। पीएमएलएन ने, आप अगर जानते हैं देखते हैं, हमारे नाजरीन को भी मालूम है कि पीएमएलएन ने लैपटॉप बहुत ज़्यादा तकसीम किए हैं और नौजवान तबके को अपनी तरफ बहुत माइल करने की कोशिश की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो और दूसरे जो यंग जनरेशन है उनको सामने ले आए हैं, बल्कि अगर आप देखेंगे मरियम नवाज शरीफ भी आ गई हैं, हमजा शहबाज भी आ गए हैं, मूसा गिलानी भी आ गए हैं, तो एक नई जनरेशन रिप्रेजेंट कर रही है। आल्दो ये वही ओल्ड लोग हैं, लेकिन इन्होंने यूथ फैक्टर को हार्नेस करने की और अपनी तरफ माइल करने की बड़ी कोशिश की है। तो लिहाजा हम अगर ये कहें कि सारे का सारा यूथ वोट बैंक जो है वो इमरान खान की तरफ है, तो ये भी सही नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि तब्दीली चाहते हैं, तब्दीली आनी भी चाहिए, लेकिन सारे का सारा वोट बैंक इमरान खान की तरह। लेकिन इस इलेक्शन में एक बड़ा अजीब पहलू है, वो सेंसिटिव भी है, खतरनाक भी है, लेकिन उसके बगैर चारा भी नहीं अगर मैं ना कहूं कि इस वक्त जो है पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें जो हैं वो दो तरफ बढ़ चुकी हैं। एक तरफ हमें दाएं बाजू है, दूसरी तरफ बाएं बाजू, जिसको हम राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट कहते हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एक थ्रेट भी दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि हुकूमत से मुज़ाकरात चाहते हैं। उन्होंने तीन पार्टियों का नाम लिया था, JUIF जमात इस्लामी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और इसमें चौथी जो जमात है वो इमरान खान की जमात भी है। जो ड्रोन हमलों के खिलाफ बहुत कुछ कर चुकी है, अभी इमरान सवात में सवाबी में जलसा भी किया है। लिहाजा एक तरफ तो ये राइटिस्ट फोर्सेज हैं, दूसरी तरफ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि वो जो उनके मुखालफीन हैं उनकी जो रैलीज हैं, उनके जो इलेक्शन कंपेन्स हैं, उनको टारगेट बनाएंगे। उसमें ANP सर फहरिस्त है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM है। लिहाजा पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है उसमें ये दो बड़े इतिहाद तो मैं नहीं कहूँगा लूज इतिहाद हैं कि राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट फोर्सेज बन गए हैं। और अगर ये बात सच मान ली जाए, जो गुज़िश्ता वज़ीर दाखला थे उनकी बात सच मान ली जाए कि पाकिस्तान के मौजूदा इलेक्शन जो हैं वो बड़े ब्लडी होंगे, बड़े खून रेज होंगे, तो अगर खुदा ना खासा इलेक्शन रैलीज होती हैं और उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो कुछ ऐसा रवैया अख्तियार करती है तो उससे अवाम जो है वो बददिल हो जाएंगे और शायद बाहर ना निकलेंगे। अभी आपने नोडेरो की बात की, नोडेरो का जलसा था वैसे जो है पब्लिक गैदरिंग होनी थी लेकिन सिक्योरिटी खदशात की वजह से उनको जो है बंद कमरे में करना पड़ा। लिहाजा ये फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं और अगर खुदा ना खासा सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यही रही तो बड़ी मुश्किलात और बड़ी परेशानियां जो हैं वो आइंदा चल के सामने आ सकती हैं। लेकिन तीन बातें बहुत अहम हैं, ECP आज़ाद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके साथ है और पाकिस्तान की अफवाज ने बिल्कुल इसका तहिया किया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेंगी। अब आने वाले दिन ही बता सकते हैं कि क्या सूरत हाल निखरती है और क्या सूरत हाल पैदा होती है।
बहुत शुक्रिया, चलते हैं लंदन। मंजूर साहब, अभी जैसा कि प्रोफेसर नजीर साहब फरमा रहे थे कि इस वक्त इंतखाबी अखाड़े में दो नज़रिए जो हैं वो मैदान में, एक दाएं बाजू और एक बायां बाजू, और उन्होंने फेहरिस्त भी गिना दी कि दाएं बाजू में कौन कौन है और बाएं बाजू में। इस दरमियान साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ भी पहुँच आए इस सियासी अखाड़े में, तो उनको किस खेमे में रखा जाए, किस कैंप में रखा जाए और उनके आने से जो है इलेक्शन और उसका जो रुख है उसको किस तरह से, उसकी तस्वीर आप किस तरह से देखते हैं?
और ये हुजूर कि जहाँ तक परवेज मुशर्रफ साहब का ताल्लुक है, सियासी तज्जिया अगर आप बिल्कुल बिलाआलाक करना चाहें तो बिल्कुल उनको इस खाने से आप कतई तौर पर निकाल दें। यह अलग बात है कि वो हमेशा रोशन ख्याली के अलमबरदार रहे और मॉडर्न इस्लाम की वो नाम लेते रहे, सब कुछ किया उन्होंने। इख्तदार में जब तक थे तो उनका नाम भी बहुत रोशन था, जाहिर है कि जिसके पास ताकत होती है उसके पास ज़राए वसाइल भी होते हैं। लेकिन जहाँ तक नज़रिए की बात है वो उस सिलसिले में बिल्कुल उनका खाना खाली है, क्योंकि जिस तरह वो मॉडर्न इस्लाम का नाम लेकर और ये समझते थे कि शायद उनके साथ एक हलका आ जाएगा, वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि ये मैदान भी उनसे इमरान खान पहले आजमा चुके हैं और इस्तेमाल चुके हैं और वो छीन चुके हैं उनसे, क्योंकि इमरान खान ने भी ज़्यादा मजहबी मूड पर ज़्यादा जोर नहीं दिया ना अपने आप को इस तरह सामने पेश किया कि वो मजहब के अलमबरदार हैं। दूसरी बात मैं ये ज़रूर अर्ज करना चाहता हूँ कि जहाँ तक मंशूर का ताल्लुक है और ये कि नज़रियाती होगी, मेरा अपना तज़िया है कि इस दफ़ा नज़रियात की बात इतनी ज़्यादा मुस्तैद नहीं होगी। वो और एक दौर था जो गुजर गया, चूँकि नज़रियात से मुराद ये होती है कि इंसान हर किस्म की कुर्बानी देने पर तैयार हो गया नज़रिए के लिए। लोगों ने यह करके देख लिया कि जिन पर उन्होंने एतमाद किया, नज़रिए की बुनियाद पर किया या उनसे मोहब्बत की बुनियाद पर किया या अकीदत की बुनियाद पर किया, उन सब लोगों ने उनको धोखा दिया है। इसलिए लोग जो हैं अब वो जहन से की बजाय पेड़ से सोचने लगे हैं। और मैं एक बात की तरफ बहुत ज़रूरी तवज्जो देना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए जब तक कोई करिश्मेटिक, कोई करिश्मा करिश्मा साज शख्सियत सामने नहीं आती, लीडरशिप जो होती है, तो लोग जो हैं ये पाकिस्तान का क्या बर्रे सगीर का एक ये सियासी उमूमी मिजाज बन चुका है कि जब तक कोई तलसमी शख्सियत, पुरवकार शख्सियत, जिसे अंग्रेजी में क्राउड पुलर शख्सियत कह सकते हैं कि जहां लोग जिसको देखने के लिए, सुनने के लिए, महज उसको देखने के लिए भी वहां लोग तैयार होते हैं, बेताब हो जाते हैं, जब तक वो सामने कोई मौजूद ना हो तो उस वक्त तक लोग जो होते हैं वो किसी पार्टी के सामने इस तरह नहीं आते। आज बदकिस्मती से हुआ यह है कि पीपल्स पार्टी के अंदर, मैं हर पार्टी की मिसाल दूंगा, पीपल्स पार्टी के अंदर जितने भी लीडर रह गए हैं उनमें कोई ऐसी कद्दावर शख्सियत नहीं रही। अब आप मुझे बताएं कि पंजाब में क्या राजा रियाज और वो एक साहब और जो है शौकत बसरा साहब, या इस किस्म के इम्तियाज सफदर बड़ाइज साहब, या ये कमरुज़मान काहरा, क्या ये ऐसी शख्सियात है कि जिनके पीछे लोग आंखें बंद करके उनको वोट देने पर तैयार हो जाएंगे? देखिए कुछ भी कहिए, नवाज शरीफ का, इमरान खान का, मौलवी फजलुर रहमान का, इन लोगों का एक थोड़ा सा वो एक वक़ार है, एक एक किस्म की शोहरत है उनकी, एक उनका मकाम है, उनका एक स्टेटस है, लोग उनकी तरफ तवज्जो से उनकी बात सुनते हैं। पीपल्स पार्टी के बाद जरदारी जो है वो अलामत बन चुके हैं लुटो खसोट की, वो एक कारून के नाम से जाने जाते हैं, हारून और शद्दाद के नाम से। बाकी लीडरशिप जो है उनके अंदर भी कोई ऐसी खूबी नहीं है। तो ये बात जो है ना, ये बिल्कुल भूल जाइए कि पीपल्स पार्टी उससे वो पार्टी रह गई है। अब देखिए भुट्टो की कामयाबी का क्या था, वजह क्या थी कि उनकी शख्सियत के अंदर वो एक मकनातीसियत थी। अयूब खान की वजह क्या थी कि उनके अंदर भी एक किस्म का एक मकनातीसियत थी, लोगों के अंदर उनका एक रोबोदाद था, लोग समझते थे कि ये इंटरनेशनल तौर पर भी बात करने के काबिल हैं और उनके अंदर खूबियां हैं। इसलिए बाकी लीडरों को देख लीजिए, जो भी हमारी माजी की तारीख देख लीजिए, ये हाल की भी देख लीजिए। अब इमरान खान के जलसों को देखिए, ताहिर कादरी साहब पहुंचे चूंकि उनके अंदर कुव्वत गोयाई है, जो तकरीर करते हैं तो लोग उनकी तरफ मायल होते हैं। तो जब तक ये चीजें, ये खसूसियात, ये इम्तियाजात किसी लीडर के अंदर ना आए, तो महज उनको नजरिए का लालच देकर या नजरिए की बुनियाद पर यह कहना कि आपके मसाइल हल करेंगे, चूंकि लोग उन्हें आजमा भी चुके हैं।
बहुत शुक्रिया आपका।
और एक आखिर में एक बात अर्ज करना चाहता हूं।
जी फरमाइए।
वो सिर्फ इतना कि ये जो 62-63 का चक्कर चला रखा है, इससे यूं मालूम होता है कि ये इलेक्शन के लिए नहीं हो रहा, यूं मालूम होता है जिसको किसी खुदा न खासा जो दायरे कुफर में पहले रह रहा है उसको दायरे इस्लाम में दाखिल किया जा रहा है। इसको उन्होंने यूं साबित कर दिया है कि जैसे मुसलमान बनाने की एक ये नई एक्सरे मशीन लगा दी गई है ताकि उनके अंदर इस्लाम दाखिल किया जाए।
बहुत शुक्रिया।
जो मकसद था 62-63 का जो...
बहुत शुक्रिया आपका। आगा मसूद हुसैन साहब, अभी कल का बयान है MQM के कायद अल्ताफ हुसैन साहब का, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाद इकदाम पर तनकीद की और कहा कि इलेक्शन कमीशन के बाद इकदाम कुछ ऐसे हैं कि बर वक्त इंतखाबात की राह में वो रोड़े उसके ज़रिए से अटक सकते हैं और इस सिलसिले में खदशात पैदा हो रहे हैं। वो कौन से इकदाम हैं अल्ताफ हुसैन की निगाह में जो इलेक्शन कमीशन के, जिनके बारे में वो खदशात का इजहार कर रहे हैं?
नहीं, वो अब मैं एक्चुअली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और मेरे उनसे बहुत से सवाल हुए थे। ऐसा नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मैं मौजूदाना दरख्वास्त करूंगा कि इंतखाबात की तारीख बढ़ जाए। उन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया था, ये उनके अल्फाज थे। मीडिया ने बिल्कुल गलत पोर्ट्रे किया है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनके बारे में कुछ तनकीद की, वो बिल्कुल बिल्कुल सही की है, क्योंकि वो जिस किस्म के सवाल करते हैं और जिस किस्म के निजी गुफ्तगू वो करते हैं, तो उसकी वजह से ये है कि एक आम आदमी जो इलेक्शन लड़ना चाहता है वो खासा जुजुल हो जाता है, खासा परेशान हो जाता है, मुस्तरब हो जाता है। तो उनकी तनकीद इस सिलसिले में बिल्कुल सही है और इस सिलसिले में आज फैसला भी ले लिया गया है कि रिटर्निंग अफसर को तमाम जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं उन्होंने उनको मुतनदा किया है कि आप किसी किस्म के निजी सवालात नहीं करेंगे और वो सवालात करेंगे जिसका ताल्लुक अवाम की नुमाइंदगी से हो। तो वो बात अल्ताफ साहब की जाहिर है कि वो मंजूर हो गई और उन्होंने इसी बुनियाद पर तनकीद की, उनका डबो लहजा इसी पे बिताओ। दूसरा डबो लहजा उनका ये था कि कराची में जो हल्का बंदी की गई है और इस सिलसिले में जो इलेक्शन कमीशन ने अपना यू टर्न किया है उस पर भी उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि पहले तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि मरदमशुमारी नहीं हुई है, इसलिए कराची में जो है हल्का बंदी के सिलसिले में वो तजवीज जो हुकूमत ने पेश की वो जायज नहीं है। अब इसके बाद जब इलेक्शन बहुत करीब आ गए तो जनाब फखरुद्दीन इब्राहिम साहब ने कहा कि नहीं, कराची में जो है वो हल्का बंदी होनी चाहिए और कम अज कम जैसे 3 कौमी असेंबली की और कम अज कम 8 जो है वो सूबाई असेंबली की जो नशितें वो मुतासर हो सकती हैं MQM की, तो उस पर उन्होंने तनकीद की थी। और इस पर लोगों को बड़ा ताजुब था कि फखरुद्दीन इब्राहिम अपने आप को इस तरफ तो कहते हैं कि मैं बहुत ही नेक हूँ, बहुत ही शरीफ हूँ, लेकिन यह है कि वो अब समरसॉल्ट कर रहे हैं, यानी कभी इस तरफ होते हैं कभी उस तरफ होते हैं। तो ये सूरत हाल जो है इलेक्शन की जो शफाफियत है वो बिल्कुल मुतासर हो सकती है, क्योंकि या कोई एक ही फैसला आप करते हैं, जैसे आपने कहा था कि 98 में मरदमशुमारी हुई उसके बाद नहीं हुई, सही कहा उन्होंने, लेकिन जब आपने ये बात सही तस्लीम कर ली फिर दोबारा आपने अपना समरसॉल्ट किया, आपने खलाबाजी खाई और उसके बाद आप कहते हैं हल्का बंदी हो जाए। तो ये चीजें थी इस पर अल्ताफ साहब ने बाकायदा तनकीद की है और लोगों ने, और वो तनकीद जायज है क्योंकि अगर ये तनकीद ना भी करते तब भी लोग महसूस कर रहे हैं कि भाई जब के इलेक्शन करीब आ गए तो आप तो हल्का बंदी को असर न उसको तरतीब कर रहे हैं, असर न उसको मुनजम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और यही अल्ताफ साहब ने बात की। एक और बात मैं आपकी खिदमत अर्ज करूँ और अगर आप इजाजत दीजिए तो अभी हमारे भाई ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान नजरियाती जंग नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अब कोई नजरियाती कारकुन नहीं है, सब लूट कसूर, अब तो कारकुन किसी भी पार्टी की हो वो सब लूट कसूर में शामिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल जो जरदारी साहब को मिले हैं उन्होंने पाकिस्तान में चोर बाजारी का, डकैती का ऐसा निजाम कायम कर दिया है कि मेरा ख्याल है कि अगर कोई भी ताकतवर लोग असेंबली में आते हैं या कोई हंग पार्लियामेंट आती है या कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, तो मैं समझता हूँ उसके लिए आइंदा 5 सालों में काम करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि खजाना खाली है और अब अगर आप IMF के पास नहीं जाएंगे तो जाएंगे जैसे कि मैंने पहले कहा। तो ये यहाँ दाएं और बाएं बाजू की जंग नहीं है, अब सिर्फ जंग यह है कि क्या आप पाकिस्तान को बचा सकते हैं, क्या पाकिस्तान को माशी सूरत हाल से निजात दिला सकते हैं, क्या लोगों को जो गैस और लोड शेडिंग की जो मुश्किल है उससे निजात दिला सकते हैं, क्या रुकी हुई सनअतों को आप चला सकते हैं, क्या एग्रीकल्चर को रीइनोवेट कर सकते हैं, रीइनोवेट कर सकते हैं, ये बड़े बुनियादी सवाल आते हैं और ये कोई इसका ताल्लुक को किसी दाएं बाएं बाजू से नहीं है।
बहुत शुक्रिया आगा साहब, बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में।
आम आदमी हरासा है क्योंकि उसको कहीं भी मतलब ये सहूलत नहीं मिली। आप कराची की सड़कों में देखें किस तरीके से लोग जो है बसों में सवार होते हैं छतों के ऊपर, और किसी भी शाम के वक्त किसी औरत का निकलना कराची में जो नहाल है, और अगर निकल भी जाती है तो उसके पर्स छीन लिए जाते हैं, शादी हालों के सामने डाकू खड़े रहते हैं और जहां वो जेवर छीन लेते हैं। ये एक सामाजिक दरिंदे जो फिर रहे हैं कराची में या खैबर पख्तूनख्वा में या क्वेटा में, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। ये पाकिस्तान की सालमियत पर बहुत बड़े सवाल लेके खड़े हो रहे हैं और इलेक्शन में यही फैसला होगा। 62-63 बिल्कुल उसका इतलाक होना चाहिए और मिनाजुल कुरान के जनाब सरबराह आदमी साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल सही की है कि अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे और अगर बासलाहियत लोग नहीं आएंगे तो पाकिस्तान को इस तारीखी और
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में अगर वक्त रहा तो। आगा साहब,
पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं और गली गली कूचों में जाते हैं और हमें भी मतलब ये धमकियां मिलती हैं, लेकिन हमें अपने वतन से मोहब्बत है, हमें अब कुचले हुए आवाम से, गरीब आवाम से, मुखलिस ज़दा आवाम से।
जी आगा साहब बहुत शुक्रिया, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, वक्त रहा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। प्रोफेसर नजीर साहब, कल काबीना का जो निगरान काबीना उसका पहला इजलास हुआ जिसकी सदारत निगरान वजीर आजम मीर हजार खान खोसो साहब ने किया, और उसमें जो एक अहम बात की गई वो ये कि इलेक्शन को सबोताज करने की हर साजिश को हम नाकाम बना देंगे, क्या ऐसी कोई साजिश है?
देखिए साजिशें तो होती भी रहती हैं और की भी जाई हैं। अब आगा मसूद साहब से मैं डिसएग्रीमेंट फिर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के तमाम अखबारात ने, पाकिस्तान के तमाम मीडिया ने अल्ताफ हुसैन साहब की जो बात है उसको यही कोट किया है। एक अखबार कर ले, एक मीडिया हाउस कर ले तो फिर भी बात है, तमाम मीडिया हाउसेज ने और तमाम अखबारों ने यही खबर लगाई है कि अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं इलेक्शन का पोस्टपोनमेंट चाहते हैं 15 दिन से 1 महीने के लिए। क्यों चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसकी कोई वाज़ह सूरत हाल नज़र नहीं आ गई। दूसरी तरफ मैं जैसे आपको फिर कह रहा हूँ, मैं इनकी बातों से एग्री करता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में नजरियों की जंग बिल्कुल नहीं है, पेट की जंग है, इसमें कोई शुका शुबा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत को सबसे बड़ा खतरा जो है वो तालिबान से है और तालिबानी जो सोच है उससे है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। अगर कराची में या KPK में या कहीं और जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उनकी वजूहात जो हैं वो डेमोक्रेसी नहीं है, उनकी वजूहात जो हैं आसिफ अली जरदारी नहीं है, उनकी वजूहात जो हैं पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है, हर हुकूमत का यह फ़र्ज़ है। सिंध में, KPK में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, हर जगह हुकूमत है, वो क्यों अपने असर रसूख इस्तेमाल नहीं करती और क्यों ये चीज़ें पूरी तरह से अमल में नहीं लाती? इसमें किसी एक को कसूरवार करार देना बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बात यह है कि निगरान वजीर आजम का और निगरान कैबिनेट का सिर्फ एक ही काम है, चाहे उसमें 30 दिन लगें चाहे उसमें मजीद दिन लगें, कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फैसिलिटेट करना है और इलेक्शन करा के यहाँ से चले जाना है। मैंने फिर अर्ज किया था कि इस इलेक्शन के पीछे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की तमाम जमहूरी कुव्वतें हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है, और सबसे बढ़कर जिसको हम बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेज भी हैं, जो चाहती हैं कि पाकिस्तान में इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए और पाकिस्तान का जमहूरियत का अमल जो है वो चलता रहे, ताकि अवाम को जो है वो उनकी चीज़ें देखें। अगर कोई हुकूमत गलत काम कर रही है तो इसमें जमहूरियत का कसूर तो नहीं है ना, जमहूरियत के लिए कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं, आजमाइशें भी होती हैं, उसके लिए काम करना पड़ेगा। एक हुकूमत गई है, दूसरी जमहूरी हुकूमत आएगी, इंशाल्लाह अजीज पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंतकाल जो है पुरअम तरीके से वो मुंतकिल हो रहा है, जमहूरी कुव्वतों को मुंतकिल हो रहा है। इस सिलसिले में कोई खसूस शकूक व शुबहात जो हैं वो पैदा नहीं होने चाहिए, लेकिन शकूक व शुबहात शुबहात जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे वासिक उम्मीद है और मैंने यही मिसाल दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त आज़ाद है, पाकिस्तान का मीडिया बहुत आज़ाद है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि इलेक्शन हो, पाकिस्तान की आर्मी चाहती है इलेक्शन हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी क़ुव्वतें ये चाह रही हैं कि पाकिस्तान में जो जमहूरी निज़ाम है उसको तकवियत मिले, उसको स्ट्रॉन्ग हो, और पाकिस्तान का जो ये जमहूरी सफ़र है वो आगे की तरफ जाए। एक सवाल जो लंदन से उठाया गया था उसकी इजाज़त चाहता हूँ। देखिए, अभी इलेक्शन प्रोसेस फुली तौर से शुरू नहीं हुआ, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं उनका हामी नहीं हूँ, मैं एक तजिया पेश कर रहा हूँ, एक अभी तक अपना एक ट्रंप कार्ड जो है वो पेश नहीं किया। कुछ अरसा में बिलावल भुट्टो जरदारी है, चाहे उसके पीछे लोग हैं या नहीं हैं, एक पर्सनैलिटी है, एक बेनज़ीर भुट्टो की वो बेटा है, लिहाजा लोग उसको देखने के लिए और उसको सुनने के लिए ज़रूर जाएंगे। ये अभी क्योंकि प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हो रहा, जो ही इलेक्शन की स्क्रूटनी और स्क्रीनिंग कंप्लीट हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और बाकी दूसरी जमातें भी हैं वो भी अपना अपना मंशूर लेके आ रही हैं, वो अपने आप को लॉन्च
करेंगे।
अभी देखना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गिलानी भी आएगा, शायद राजा क्या कहते हैं जो पुराने वजीर आजम वो भी आएंगे, लेकिन उनके नज़दीक इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट
प्रोफेसर नजीर साहब, वक्त हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का बच्चा है, आपसे ही अगला सवाल करना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान को जहां माशी संगीन सूरत हाल का सामना है, वहीं उससे बढ़कर बहुत से तर्ज निगारों का कहना है कि जो पाकिस्तान को सबसे बड़ी मुश्किल का सामना है वो दहशत गर्दी का, और जाहिर है कि दहशत गर्दी जो है पाकिस्तान की सालमियत और उसके वफाक के लिए खतरा है, और मईशत तो बहरहाल उसका किबला दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन ये जो दहशतगर्दी जो खोखला कर रही है मुल्क को, इस ताल्लुक से पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनका कोई नारा, उनका कोई मंशूर, उनका कोई वाज़े लायामल सामने आया है?
देखिए, अनफॉर्चुनेटली सारी क्लेम तो ये करती हैं लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, और मैंने शुरू में भी आपसे बात की थी, मैं अभी तक उस पर मेंटेन हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त दो नज़रियों की जंग है, जिसमें एक राइटिस्ट फोर्सेस हैं और एक अनराइटिस फोर्स, चाहे इसको लेफ्टिस्ट राइटिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में ना ले जाएं। मईशत उसी वक्त स्ट्रांग होगी जब हुकूमत स्ट्रांग होगी, हुकूमत उसी वक्त स्ट्रांग होगी जब उसके पाँव नहीं काटे जाएंगे, उसके पाँव उसी वक्त नहीं काटे जाएंगे जब ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान दफाए कौंसिल जो है ये लोगों को भराती नहीं है, ये लोगों को के जज्बात को ख़राब नहीं करती। आपको ये बताऊं कि इस दफ़ा पाकिस्तान की रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो भी सामने आ गई हैं, शियों ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, सुन्नियों ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, हज़ारा ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, लिहाजा इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट जंग है वो माशी जंग नहीं है, वो समाजी जंग नहीं है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जंग जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी को नाकाम करने की जंग है। ये ज़ियाउल हक़ का जो बोया हुआ बीज है वो आज सामने आ रहा है, और पाकिस्तानियों को 18 करोड़ पाकिस्तानियों को मिल के इस दहशतगर्दी को ख़त्म करना पड़ेगा, और ये सियासी अमल से ही ख़त्म हो सकता है। अगर ये दहशतगर्दी ख़त्म ना हुई तो पाकिस्तान की सालमियत को बहुत बड़ा धचका और बहुत बड़ा ख़तरा लग सकता है, लिहाजा माशियात से और समाजियात से ज़्यादा ज़रूरी जो है पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर है। देखिए, उन्होंने सवात में क्या किया, उन्होंने बनेर में क्या किया, उन्होंने फाटा एरिया में क्या किया, लिहाजा अगर ये जंग जो है कराची में या लाहौर में आ जाएगी तो इसके बहुत बड़े ख़तरनाक नतायज जो है सामने आएंगे। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान का नौजवान जो है वो जाग रहा है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो रोशन है, पाकिस्तान की जमहूरी कुवतें जो हैं वो इस दहशतगर्दी को हमेशा हमेशा के लिए नाबूद कर देंगी।
बहुत शुक्रिया आपका, वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मंजूर रिजी साहब से और आगा मसूद हुसैन साहब से माजरत कि दोबारा उनकी खिदमत में ना आ सके। जनाब, हम आप तीनों मुअज्ज़ज़ मेहमानों से इजाज़त चाहते हैं और साथ ही अपने मुअज्ज़ज़ नाज़रीन से। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। बहरहाल, इंतखाबी गहमा गहमी अपने उरूज पर है और आने वाले दिनों और हफ्तों में ये अपने बाम उरूज को पहुँच जाएगी, और देखना यह है कि ऐवान इख्तदार में कौन और कौन कौन पहुँचता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली अब्बासी जी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।